पतित पावनी गंगा इलाहाबाद से हम सभी के बीच में पधारे हैं, इसीलिए हम आपका एक हाथ से ताली से स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। भाग्य की बात तो यह है, लोग नदियों के पास जाते हैं नहाने के लिए, और हमारे सौभाग्य की, परम भाग्य की बात यह है कि नदियां हम सबके पास आती है पावन बनाने के लिए, क्योंकि बाबा भी परम धाम से आए हैं हमारे लिए। इसीलिए मैं बहुत दिल से आपका स्वागत करती हूँ और मैं आपको तह दिल से नम्र अनुरोध करती हूँ कि आप हमारे भाई बहनों से ज्ञान रत्नों से झोली भरेंगे, रममान रहने वाले रहनुमा शाहदिल मनोरमा दीदी।
ओम शांति। बहुत बहुत भाग्यशाली हैं आप सब। आदरणीय दादी जी अभी अभी मिले हैं, इसके पहले भी एक बहुत अच्छी क्लास मिली है ना, आप सब झोली भरते जा रहे हैं। और मुझे भी वंदना बहन ने कल बांध के यहाँ बिठा दिया है कि आपको आना है। मैं ये सोच रही हूँ, मुझे ब्रजेंद्रा दादी याद आए कि उनके हाथों के पाले हुए बाबा के वो नूरे रतन जो मौजूद हैं, और अभी संतोष दीदी की पालना ले रहे हैं। हा? तो ऐसी महान आत्माओं को मैं क्या कुछ बताऊं? है कुछ बताने लायक? अच्छा, बहुत 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 भाग्यशाली है। तन का भाग्य, मन का भाग्य, धन का भाग्य और जन का भाग्य आप सबको प्राप्त है। प्राप्त है ना? जो आगे बैठे हैं वो तो बिल्कुल मुनादी करके कह रहे हैं तन का भाग्य प्राप्त है। हाँ? जिनों के पास तन का भाग्य होता है प्रकृति जीत होते हैं ना। तो बाहर की प्रकृति, वायु जल अग्नि पृथ्वी, उन सब की बात छोड़ो, अरे इन पंच तत्वों की जो काया है ना, ये भी बड़ी माया दिखाती है, मगर इस पर कंट्रोल है तब तो बैठे हैं ना आराम से नीचे। बहुत बड़ा तन का भाग्य है जो हम आकर के इस मधुवन वरदान भूमि में, बाबा की कर्म भूमि में एक साथ एक आसन पर बैठकर तप कर सके। होता है ना, कई बार हम सोचते हैं, हमको संकल्प रहता है, दीदी को 2 महीने पहले से सहेज के रखते हैं, अब की बार चलो ना मेरा टिकट पहले बुक कराना। हा? ये हमारा भाग्य है, लेकिन सौभाग्य तब जब टिकट बुक हो जाए, और पद्मा पदम भाग्य तब जब मधुबन पहुंच जाओ। है ना? तो सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, कोई दो राय नहीं, लेकिन आप पद्मा पदम भाग्यशाली हो जो यहाँ पहुंच गए हो। है ना? तो ये तन का भाग्य है कि बाबा की कर्म भूमि में हमें तप करने को मिले। मन का भाग्य है, देखो जो आता है वो आपको कहीं ना कहीं किसी भी सूत्र से टाई अप कर जाता है। मुझे नहीं मालूम कि राजू भाई का क्या विषय था, बट आई नो दादी अभी जो बोल रही थी, अभी अभी अब हाँ, कब नहीं, अब अभी। तो जो भी यहाँ आएगा ये विक्रमादित्य के सिंहासन पे बैठ के आपको क्या करेगा, टाई अप करता जाएगा, एक एक सूत्र से आपको बांधता जाएगा, ये करना है ये करना है। तो मन को एकाग्र करके हमको तो करना ही है ना, क्योंकि जो आ रहा है वो करने की बात बता रहा है। धन का भाग्य है, सक्षम है, समर्थ है, तभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत बार तन भी कहता है तैयार है, स्वस्थ है, मन भी कहता है मैं जाऊं, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति होती है, धन नहीं कहता कि मैं जाऊं, क्या करेंगे। और सबसे उससे भी बड़ी बात, ऊंची बात है जिसको हम इतना महत्व नहीं देते हैं, वो है जन का भाग्य। आपके पीछे जो लोग हैं, मैं ज्ञानियों की बात नहीं कर रही हूं, मैं उनकी बात कर रही हूं जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, वो माँ है लौकिक, सास है, बहन है, भाई है छोटा, बेटा है, एनीवे कोई भी संबंधी है। किसी को आप दुकान सौंप के आए हैं, किसी को आप घर सौंप के आए हैं, किसी को आप बच्चों को विद्यालय पहुंचाने की जिम्मेवारी सौंप के आए हैं, किसी को आप जो है ऑफिस की फाइलें निपटाने का सौंप के आए, एनीवे कोई है हमारे पीछे जिसने हमको सहयोग देने की बात की, भले आप जाओ हम पीछे संभाल लेंगे। हम जन का भाग्य समझते हैं कि अलौकिक परिवार में हमको जो कोऑपरेशन मिलता है सो कॉल्ड जन का भाग्य। अरे अलौकिक परिवार ये तो बांधा हुआ ही है हमें सहयोग देने के लिए, हम एक बाप के बच्चे हैं, लेकिन लौकिक थोड़ी बांधा हुआ है, बांधा हुआ है, कहता हम क्यों करें, कर लो अपना, लौट के आके कर लेना, बड़े तपस्या करने जा रहे हो, बोल सकता है ना, लेकिन उसको भी हम मना के समझा के हाँ, वो भी यहाँ कर देता है कि ठीक है मैं संभालूंगा, आप जाओ या मैं संभाल लूंगी घर, भले तुम जाओ। तो ये हमारा जन का भाग्य है, मैं इसलिए सुना रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में जन का भाग्य। और जो इस भाग्य की सराहना नहीं करते हैं कई बार धोखा खा जाते हैं। हम रोज आ रहे हैं क्लास में, टाइम से पहुंच जा रहे हैं, योग कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, घर लौट के जा रहे हैं, ऊपर से रुतबा और दिखा रहे हैं, अभी तक ये नहीं किया तुमने, हा? क्या होता है, रोज रोज सहयोग देने वाला एक दिन पूरा बैरियर लगा के खड़ा हो जाता है, नहीं करूंगा। उस समय हमको लगता है कि बाप रे ये क्या हुआ, अभी तक तो ये बहुत सहयोगी थे, अभी तक तो माँ बहुत सहयोगी थी, अभी तक तो बहन बहुत देख लेती थी, अरे आज तो सारा हंगामा करके दिया। अगले दिन जाके दीदी को बोलते, दीदी ये क्या हो गया हमारे घर में, अभी तक तो बड़ी शांति थी। जानते हो दीदी क्या करेगी, क्यों हुआ ऐसा, हमने जो खाया अकेले खाया, हमने उस प्रसाद को जो दाता की देन है, जो भगवान ने हमें दिया रोज, बांटा नहीं। अगर हमने जो खाया है ना, थोड़ा थोड़ा चखा चुखी कराई होती ना, माँ को ही कराई होती कि आज देखो माँ आपने हमको छुट्टी दी ना, बाबा ने कितनी अच्छी बात सुनाई। एनीवे मान लो उनको बाबा से कोई प्रीत नहीं है, आप उन्हें सत्संग के नाम से सुनाते कि आज हमारे सत्संग में ये बात हुई, किसी बहाने से उन्हें सुनाते आज ऐसा हुआ, कोई एक अच्छी बात, कोई एक अच्छी। जो लौकिक में माँ होती है वो क्या करती है, बच्चा खाना नहीं खाता है, ना कर देता है, वो उसको तोड़ के छोटा करके बड़े प्यार से कैसे भी करके बच्चे को खिलाती है, खा ले, खिला देती है ना, आप सबने खिलाया होगा, अनुभवी हो। तो ऐसे ही इस ज्ञान को भी हम कैसे भी करके, हाँ छोटा करके, मोड़ के, गोल करके, अपने उन संबंधियों को, वो जन का भाग्य है ध्यान रखना, जिनका हमको हमारे बैक में कोऑपरेशन है, सहयोग मिलता है हमको, हम शुक्रगुजार हैं उनके कि भाई आपने यहां से जाने के बाद थैंक्स जरूर करना, हाँ पहले किया हो या ना किया हो। तो तन का भाग्य है, बहुत भाग्यशाली हैं आप, मन का भाग्य भी है, धन का भाग्य भी है, और जन का भाग्य भी है। तब हम चार पाए लगे तो हम सिंहासन बना पाए यहाँ बैठने के लिए। अगर ये चारों पाए नहीं लगते थे तो ये सिंहासन हमें नहीं मिलता था। कल जब हम आए थे तो हमें बहन ने कहा एक टॉपिक देते हैं आपको। हमने कहा बोलिए। बोला वो लिख दिया है पर्ची में। जब मैंने वहां जाके देखा तो समान सम्मान जैसा टॉपिक था। अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि दुनिया में जो भी कुछ हुआ है, जो भी कुछ, समय कितना है भैया? 1 बजे तक ना, 10 मिनट है मेरे पास, 2-4 बातों को लेती हूँ। कि दुनिया में जो भी कुछ हुआ है उसके पीछे हम समान नहीं कहते, नारा बोलते हैं। कोई ना कोई एक स्लोगन, एक नारा दिया गया है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हिंदुस्तानी उठकर खड़ा हो गया, ठीक है हम खून देंगे, तुम हमें आजादी दो, है ना? महात्मा गांधी ने भी कोई नारा हम सबको दिया। किसी ने ये नारा दिया कि नहीं सर कटा देंगे मगर सर झुका सकते नहीं, बिस्मिल ने दिया था। तो हर एक ने इस देश और देश के वासियों को आगे बढ़ाने के लिए कोई नारा दिया और उस नारे को लेकर के कुर्बान हो गए न जाने कितनी माओं के बेटे। तो बाबा ने भी हमें कोई नारा दिया, बाबा ने हमको सम्मान दिए। बाबा तो रॉयल है ना, तो बाबा ने बड़ी रॉयल्टी से हमें एक नहीं अनेकों नारे दिए, अनेकों सम्मान दिए। लेकिन उस सम्मान को क्या हम सम्मान दे पाए? टॉपिक क्या था मुझे याद नहीं है, मैं तो एक क्वेश्चन मार्क लगा रही हूं आपके आगे कि सम्मान को हम कितना सम्मान दे पाए। अगर बाबा के दिए हुए सम्मान को हम और आप सम्मान देते तो क्या बात है, हम स्वयं में सम्मानित रहते। कौन पैदा हुआ दुनिया में जो हमें अपमानित कर सके? हम स्वयं सम्मानित होते हैं। कब? जब बाबा के दिए सम्मान को हम सम्मान देते। एक छोटा सा सम्मान ले लें। बाबा ने कहा बच्चे तुम मेरे नैनों के नूर हो। हम कितने खुश होते हैं सुनने के बाद कि वाह हम भगवान के नैनों के नूर हैं। मैं समझती हूँ, मुझे जहां तक याद है इसी मेडिटेशन हॉल में बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने ये मुरली चलाई थी। मुझे खूब याद है, लाइट जा रही थी आ रही थी तो बाबा ने कहा तुम नैनों के नूर हो, ये लाइट आएगी जाएगी, तुम्हारी लाइट नहीं आएगी जाएगी, बरकरार है। बेशक हमें बड़ी खुशी होती है कि हम बाबा के नैनों के नूर हैं, लेकिन अपने आप से एक सवाल करके पूछो, अपने आप से हर एक पूछो। अभी धीरे से आवाज आई थी कि आप अनुभूति करा दें, पीछे से अनुभव करा दें। तो आप गहराई में जाना, ये प्रश्न छोड़कर जा रही हूं कि क्या वाकई हम बाबा के नैनों के नूर हैं? थोड़ा और एनालिसिस कर देती हूं। अच्छा बाबा के नैनों के नूर हैं तो क्या होना चाहिए, लक्षण क्या होंगे आप बताएंगे? क्या होंगे जी? बाप समान बनना। अच्छा और? सदैव खुश रहेंगे। अच्छा और? हल्के रहेंगे। नैनों के नूर हैं, क्या निशानी होगी? हाँ क्या बात है, चेहरे से नूर टपकेगा। अरे नीचे उतर आए, नैनों में ही रहो ना। हाँ बताओ को? बाबा के नैनों में समाया या बाबा मेरे नैनों में समाया? बाबा मेरे नैनों, गुड, कुछ करीब आया। अच्छा और? अरे पीछे वालों बोलो भाई, आगे वालों का ही नंबर थोड़ी है। क्या निशानी होगी जी? रूहानियत होगी, राइट। अच्छा और? आत्मिक दृष्टि रहेगी सो पा लिया, ये नैनों से झलकेगा नहीं, झलक सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा और जी सदा संतुष्ट रहेंगे। अच्छा मन संपन्नता दिखाई देगी, और कुछ बाप समान होंगे। देखिए अब बताया बाबा समाया हुआ होगा, बहुत अच्छे उत्तर आए हैं, लेकिन बाबा के आप कुछ कह रही है? बाबा के नैनों में पहले ये देखो क्या था, क्या था बाबा के नैनों में? बेशुमार दो चीजें थी, एक तो बेशुमार प्यार था हम सबके लिए, था कि नहीं? बेशुमार प्यार था। अगर बाबा की नजरों में वो प्यार नहीं होता तो हम और आप यहाँ नहीं होते। ये बाबा का प्यार है जिसकी वजह से हम यहाँ हैं। और दूसरा, जैसे बाबा कहते थे ना कभी कि एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति, हाँ एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम। लेकिन बाबा के नैनों में अगर कभी जाके बाबा के कमरे में, कभी क्या रोज ही बैठते हो, हाँ बाबा की कुटिया में भी बैठते होंगे, क्या छलकता है, प्यार छलकता है ना? और उस प्यार के पीछे जो दूसरे नेत्र में छलकता है वो है रहम। बाबा में बेसुमार रहम था, जिसको हम अपने शब्दों में अगर कहें तो हम कहेंगे क्षमा भाव था, था बेसुमार क्षमा भाव था। आज हम में है? इस प्रश्न का उत्तर अपने आप में खोजना, हम सबको खोजना है कि क्या वो प्यार, क्या वो रहम, क्या वो क्षमा भाव आज हम में है। अगर हमारे नैनों में भी है तब तो हम नैनों के नूर हैं। लेकिन अगर हमको देखते हुए कि जो मीरा बहन है ना अच्छी नहीं है, हाँ ये जो प्रफुल्ल भाई है ना, अरे मेरे को तो छोड़ ही गया था वहां, बस में सबको ले गया, मैं खड़ी रही रोकती रही, कैसा भाई है। माना किसी का किया हुआ कुछ भी कार्य हमें याद रह जाता, हम इसी जन्म की बात कर रहे हैं, पिछले जन्मों की बात नहीं कर रहे। संगम युग में इस अलौकिक परिवार में अगर किसी का कोई व्यवहार जरा सा चीटी के बराबर कहीं चुभ जाता है तो हम उसे क्षमा नहीं कर पाते, कर पाते नहीं कर पाते। और बाबा क्या कहते हैं, 36 अवगुण है हर जा नहीं, अरे उसने मुझे पहचाना ये तो सोचो, मैंने कहां से उठा के कहां ले आया, क्या हम यहां बैठने लायक थे? लेकिन कमाल है बाबा की, कमाल है। अब कहती हूँ जरा पिछली लाइफ में जाओ और कंपैरिजन करो, वक्त नहीं है, नहीं तो मैं अभी ऑब्जर्वेशन कराती कि आप जाओ पीछे जाओ और पीछे जाओ, पहले की लाइफ क्या थी, बाबा के बने आज लाइफ क्या है, कहाँ से निकाल के बाबा ने हमें कहाँ पहुंचा दिया है। तो अगर ये बेहद का रहमो करम नहीं होता, क्षमा भाव नहीं होता तो कहाँ होते हैं जी? बताती हूँ, वो भी बताती हूँ, पहले तो ये देखो नैनों की नूर बने होगी नहीं। एक बात मैंने इसको मैं और अधिक क्लियर नहीं करूंगी क्योंकि 3 मिनट बचा है। दूसरी बात बोला बाबा के दिल तख्त नसीम, मतलब मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि आप खुद चिंतन करना, हमको अगर नैनों का नूर बनना है तो हमें गहराई से हर एक को वो भाव लाने होंगे। ये शांति धाम और सुख धाम दिख जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले हम में वो प्यार कोई भी हो है तो हमारा ना, वो क्षमा भाव है तो मेरे बाबा का बच्चा ना, मेरी माँ के ही 3 बच्चे हैं, मेरे ही भाई बहन हैं। अभी कोई लंगड़ा के चल रहा है तो क्या मैं समाज में ये नहीं कहूंगी मेरा भाई है, कहूंगी ना मेरा भाई है, भाई थोड़ा पैर में पोलियो हो गया और क्या, इतना ही ना। तो हमारे इस दैवीय परिवार में भी अगर किसी को किसी भी गुण का, दैवी गुण का अभाव है, तो हम ये थोड़ी नहीं कहेंगे कि हमारा भाई नहीं है, भाई है, थोड़ा सा है, ठीक हो जाएगा, संस्कार है, है ना। बाबा तो कहते हैं संस्कारों की भी होली जला दो, रहने ही नहीं दो थोड़ा सा भी। तो एक चीज की अगर हमें नैनों का नूर बनना है और हमें बाबा के दिए इस सम्मान का सम्मान है, तो हमारे अंदर बेहद का वो रहमो करम माना वो भाव, क्षमा भाव जब आएगा, तभी हम नैनों के नूर बन पाएंगे और सच्चे अर्थों में हम तभी बाबा के इस सम्मान को सम्मान दे पाएंगे। दूसरी बात, अभी बहन ने कहा दिल तख्त नसीम, तो इस प्रश्न पर भी माना बाबा जब देते हैं ना कि अरे क्या बात है बच्चे, तुम तो मेरे दिल तक नसीन हो। बोला इधर में ये ओम शांति भवन छोटा पड़ जाएगा, मेडिटेशन हॉल छोटा पड़ जाएगा, ऊपर में आ जाओ ना, जगह ही जगह है, बहुत बड़ा दिल तक है, चाहे जितनी देर बैठो, कोई मुमानियत नहीं है, कोई मना ही नहीं है। इधर तो बाबा के कमरे में 5 मिनट बैठो, एक आदमी बोलेगा बोला ए उठो, 5 मिनट हो गया, कान में कैसा लगता उस समय। लेकिन बाबा नहीं कहेगा, क्योंकि दिल तक बहुत बड़ा है। लेकिन यहां भी एक क्वेश्चन मार्क है कि अगर यहां पर कॉर्पेट बिछा, व्हाइट सीट बिछी है मान लीजिए, तो आप जब उधर से चले आ रहे हैं, थोड़ा पानी बरस गया है, अंदर आते हैं थोड़ा गीला है पैर पानी से, तो आपको यहां बैठने में थोड़ा दिक्कत महसूस होगी, ऐसा तो नहीं कहीं पानी के दाग बन जाए, लगता है ना मन में। हम बाबा के दिल पे सीढ़ी लगा के सीधे चढ़ जाएं, लेकिन कब, जब देह भान की मिट्टी नहीं हो। भगवान के दिल पे भी कॉर्पेट है, ये मत सोचो कि नहीं है। उसके दिल तख्त पर चढ़ने के लिए अगर देह भान की जरा भी मिट्टी होगी तो चढ़ सकेंगे, नहीं चढ़ सकेंगे। और ये हम में है, परसेंटेज है, ये मैं मानती हूँ। आप ये मत कहना कि बहन जी तो पूरा डंडा लेके आई है और सीधा सीधा लगा रही है, ऐसा नहीं। रियली दिल से पूछो, ये अपने आप से पूछने की बात है। अहंकार नहीं है, उसे हम कोसों दूर छोड़ आए हैं, बिल्कुल नहीं है। अहंकार होता तो हम ब्राह्मण होते ही नहीं, फिर तो रावण के खानदानी होते। अहंकार है ही नहीं, बेशक इसमें आप पास हो, 100% पास हो, लेकिन क्या है, देह अभिमान और देह भान, ये हमें अभी भी है। बड़ा खानदान है, हमारा दोस्त नहीं है, क्या करें, बहुत दिन उसकी गोद में खेले हैं, हम बड़े नॉलेजफुल हैं, हम बड़े टैक्टफुल हैं, हम बड़ी अच्छी पर्सनालिटी के मालिक हैं, हम बड़े संपन्न हैं, बड़े रॉयल फैमिली से हैं, बड़ी हाई कास्ट से हैं, हम ब्राह्मण हैं, महाराष्ट्रियन, हमारे यहाँ ये है वो, एनीवे मैं गिनाती नहीं, छोड़ो, हंसी आएगी आपको, कोई मतलब नहीं है। मतलब बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे अंदर कहीं कहीं सर उठाती हैं, और जब सर उठाती हैं तो उसके रिजल्ट जानते हो क्या होता है, कहीं ना कहीं मिट्टी है ना। अब वो सूखी हो या गीली हो अलग बात है, कुछ है। तो जब हम चढ़ने लगते हैं बाबा के दिल तख्त पे, तो हमें उस समय कॉन्शियस होता है ये मिट्टी लगी है, कैसे बैठे। बाबा लाख कहे कि बच्चे तुम आ जाओ, साकार बाबा को आप में से किसने देखा, साकार बाबा को किसी ने देखा? साकार बाबा कानपुर में आए हुए थे, और हमारी कानपुर में जो विद्या दीदी हैं, गंगे दादी के साथ रही हैं, उनके सानिध्य में, मैं समझती हूं कि मुझसे बड़ी हैं, 2-4 साल अंतर है, वो ज्ञान में पहले आई हैं, उम्र में भी मुझसे बड़ी हैं। और जब वो आई थी कानपुर, तो पैरों में इतनी इतनी मिट्टी थी, उनका पूरा परिवार पैदल चल के आते। यहाँ जमुना भाई है, जमुना भाई की लौकिक में सिस्टर हैं, जमुना भाई भी थे, वो भी थी, पिताजी थे, सब लोग थे और उस समय लौकिक फादर हमारे वहां थे, उन्होंने आंखों से देखा। बताते हैं कि कैसे वो मतलब उसी पैरों से पैदल चल के सुल्तानपुर और कानपुर में काफी दूरी है, कैसे वो लोग आए होंगे। तो जो और भाई बहन थे उनको लग रहा था कि ये लोग कहां मतलब कहां कोठी में अंदर घुस रहे हैं, ऐसे बैठे हैं। तो उन्हें बाहर ही बिठा दिया था कि बैठो अभी बाद में बाबा मिलेगा। जब बाबा को बताया कि बाबा आप बच्चे आए हैं कुछ और वो कह रहे हैं कि हमें डायरेक्ट बाबा से ही मिलना है, बाबा ने पूछा कहां से आए, मतलब वो कोई गांव से आए हैं, सुल्तानपुर के पास कोई गांव है। अब शहर वालों को तो थोड़ा अपना नशा होता है। बाबा ने कहा बुला। बाबा इतने प्यार से उनको गोद में लिया, सबको वो मिट्टी दिखाई दे रही थी और बाबा को उसमें हीरा दिखाई दे रहा था। बाबा ने इन सबको बाकायदे गद्दी पर बैठे बैठे गोद में लिया, बहुत प्यार से। बच्चे कल्प के बिछड़े बिछड़े, हाँ अभी आके मिले हो। उसके बाद बाबा ने कहा जाओ बच्चे स्नान पानी करके आओ। सोचो आप, तो साकार बाबा तो वो भी नहीं देखता था कि मिट्टी लगी है, बोला हर्जा नहीं, दिल देखता था, दिलवर था ना। लेकिन अव्यक्त कहता है थोड़े छान के आओ, साफ करके आओ, धिलाई करके आओ। ये मिट्टी की जिम्मेवारी निकालने की बहनों को निमित्त बना के बाबा ने दे दी कि भाई ले आओ जरा इनके पैर वैर धुलवा के तब लाओ। तो हम जब योग करते हैं या बाबा के दिल तक नसीन होना चाहते तो उस समय किसी तरह का कोई भाव अगर हम में है तो उसे धो लो अच्छी तरह से। ये जो रेड लाइट होती है ना, योग होता है, ये क्या है, ये वो जल है जिससे कि हम अपने देहभान की और देहाभिमान की मिट्टी को तबीयत से धो सकते हैं। अभी शांतिवन वालों की भट्टी चली, दो ग्रुप हुए, बहुत तबीयत से योग हुआ। हम लोगों की भी यहाँ भट्टी चली थी, तीन तीन घंटे चार चार घंटे योग चलता था तो पुरानी भट्टियां याद आ जाती थी, क्या आनंद आता था। कुछ नहीं, कोई क्लास नहीं, केवल योग और मौन। आज भी आवश्यकता उसी चीज की है, खूब योग हो। हम वो करते नहीं है, माफ करना हा? वो बीरबल की खिचड़ी सुनी होगी आप सबने, देखो टाइम ज्यादा बढ़ता जा रहा है, कि वो जो खिचड़ी पकाने की बात है ना उनकी, कि उन्होंने कहा मैं खिचड़ी पका रहा हूं। आप सबने सुनी होगी वो कहानी कि वो तालाब के अंदर एक व्यक्ति को सजा दी गई थी रात भर खड़े रहने की। खड़ा रहा वो, तो जब आया तो उससे पूछा कि इतनी सर्दी में तुम कैसे, क्या सबूत। उसने कहा मैं हुजूर महल का दीपक देखता रहा और इसी से मेरी रात कट गई। बोला अच्छा ठीक है, तभी तुमको ठंड नहीं लगी, हाँ तुम उस दीपक की अग्नि से सही रहे। तो बीरबल को बड़ा खराब लगा कि क्या मूर्खतापूर्ण बात है। बीरबल ने उसका जवाब देना चाहा अन्याय का, और अपने घर में जाके चार बांस लगा के उन्होंने पतीली चढ़ा दी, दाल पानी चावल सब डाल दिया। अब जो बुलाने आए तो उसको बोल देते थे कि भाई खिचड़ी पका रहा हूं, पक जाएगी तो आऊ। कितने धावन आए दरबार से, हर एक को एक ही उत्तर। तो आखिर बादशाह को लगा कि बीरबल क्या तमाशा है, खिचड़ी पकी नहीं है, चलो मैं चल के देखता हूँ। जब गए तो देखा उन्होंने चार बांस लगे हैं, तो उन्होंने कहा भी कि बीरबल कहीं ऐसे खिचड़ी पकती है, क्या तमाशा है। बोले हुजूर अरे किले की उस प्राचीर पे जलते हुए दीपक से अगर व्यक्ति की सर्दी दूर हो सकती है तो मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती। कहने को ये चुटकुला है या मुहावरा है, लेकिन ईमानदारी ये है कि हमने भी कहूं कुछ अलबेलेपन के, आलस्य के, हा? और किस किस चीज के चार बांस लगा रखे हैं, लगा रखे हा? पर चिंतन और व्यर्थ के, प्रदर्शन के, मना वो बांस लगे हैं जो हमारी खिचड़ी को पकने नहीं देते। और योग हम लगाते हैं, आए सेंटर पे भागते दौड़ते सर 7 बजे बहन जी अभी तक नहीं आई, कम से कम 4 बार घड़ी देख लेते मुरली कितनी देर में शुरू होगी, अरे ये बताओ तुम्हारा योग कितना लगा। 5 मिनट माना घर से सेंटर पर आए तो 10 मिनट तो हमको बाहर से अंदर आने में लग जाता है। मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, मैं चैतन्य, माना चले स्टार्ट किया इंजन, और 10 मिनट तक तो हम बहुत अच्छी अवस्था में रहे, और फिर ध्यान चला गया घड़ी पे, या कोई साइड से आके बैठा बोले अरे 7 बज गया अभी तक दीदी आई नहीं, नीचे उतर आए। अच्छा 30 मिनट के योग में कितनी देर योग लगाया हमने, घर में शाम को 6:30 से 7:30 भी योग नहीं हो पाता। हम बैठते हैं योग में, पड़ोस की कोई महिला या कोई संबंधी मिलने आ गया, वही समय मिलने आ गया, क्या करेंगे बताइए। बोले क्या करें बहन जी, अब तो योग लगा रहे थे मगर वो आ गई, उनके साथ जाना पड़ा, बहुत जरूरी काम आ गया, शॉपिंग करानी थी। ओम शांति। अच्छा उसका इलाज है, शाम को हम अपने योग में, हमसे भगवान मिलने आया, हम क्यों समझौता करें। जो भी आया है बोले बैठो ना बहन, हमारी साधना का समय है, आप भी बैठो। या तो वो अगले दिन सारी कॉलोनी में शोर मचा देगी, मत जाना उनके यहाँ, योग में बिठा देंगे, और या अच्छा लगेगा तो कल से कहेंगे हमको भी सिखाओ, एक जिज्ञासु बढ़ जाएगा। लेकिन हमारी कमजोरी है, हम समझौता कर लेते हैं, हम चले जाते हैं, हम योग छोड़ देते हैं, क्या होता है, नुकसान ही नुकसान है। तो अपने को बांस हटाने पड़ेंगे, वो खिचड़ी तभी तैयार होगी। अगर बाबा ने कहा ना, चिंतन और संकल्प इन दोनों के साथ दो शब्द और प्रयोग करो, श्रेष्ठ और शुभ। चिंतन करो तो शुभ करो, संकल्प करो तो श्रेष्ठ करो, पुरुषार्थ करो तो तीव्र करो। तो बाबा ने हर चीज के साथ एक एक शब्द जोड़ा। क्यों जोड़ा? क्योंकि हम कर रहे हैं, ये तो बहुत दिन से कर रहे हैं। जब भी कभी कोई बात होती है तो हम उत्तर देते हैं, कर तो रहे हैं बहन जी, हो तो रहा है, क्या करें, कुछ कुछ होता रहता है। ये कुछ कुछ नहीं होना चाहिए दादी, इसीलिए बार बार आपको पक्का करा के गई, अब कब नहीं, अब। तो हम सम्मान को सम्मान देना सीखें। अरे कोई वो अब कहना नहीं चाहिए, बहुत छोटा सा साधु, बहुत छोटा सा साधक अगर अपनी भस्म अपनी धुनी से निकाल के दे देता है ना, तो उसको माथे से लगा के रखते हैं, स्वामी जी ने दिए हैं। अरे दुनिया के स्वामी जी, भगवान ने हमको इतना बड़ा सम्मान दिया, बोला तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जब आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो, क्या बात, फिर पराजय का रोना क्यों, शक्ति का अभाव क्यों। सदैव सफलता हमारे अंग संग होनी चाहिए, हम जो चाहेंगे वही होगा, लेकिन कब, जब श्वासों श्वास बाबा हमारे साथ होगा, तभी ना होगा। तो बाबा ने जो हमको सम्मान दिए, एक सम्मान को अच्छी तरह से इधर में गांठ बांध लो, ज्यादा नहीं करो, ज्यादा में लोड बढ़ जाता है। 12 सम्मान रखो, 24 सम्मान रखो, 12 समान माना एक समान आप अपने घर में अच्छा बड़े बड़े अक्षरों में लिख करके 4-5 जगह लगा दो, कमरों में, किचन में, डाइनिंग में, जिधर से भी गुजरो। नहीं मालूम आप लोगों का गांव से कितना वास्ता है, पुराने जमाने में गांव में जो घर होते थे ना, लोग उनमें आईने लगा देते थे जगह जगह, अभी भी लगाते हैं, जरा आधुनिक लगाते हैं, बड़े वाले ग्लास लगाते हैं, इधर से निकले तो देख लिया, उधर से निकले तो देख लिया, गवारा नहीं है जरा भी इधर उधर हो जाए कुछ। तो जरा सोचो कि जो हमारा सम्मान है वो हमारा श्रृंगार है, क्यों इधर उधर हो जाता है। तो जब लिख के लगा दोगे ना, तो ना चाहते भी ध्यान जाएगा, प्रैक्टिकल बात बता रही हूं, ना दुख दो ना दुख लो। ये एक जगह स्टिकर यहां बना था तो ले गई और लगा दिया, अभी देती तो नहीं लेकिन ले लिया करती थी बहुत बार, अपनी बीती सुना रही हूं, और लगता था कि इस बहन का संस्कार कब बदलेगा, कहती कुछ नहीं थी, फिर जब उस पर निगाह जाती थी, न दुख दो न दुख लो, तो सोचती थी चलो हटाओ इसका संस्कार है, और यह सोच के छोड़ देती थी आज नहीं तो कल बदलेगी, आज नहीं तो कल चेंज होना ही है इसने, और मुझे इसको शालिग्राम बनाना ही, घिस घिस के बनी जाएगी। शुभ चिंतन रखती थी आज नहीं तो कल बनी जाएगी। तो उस स्लोगन ने मदद की, बार बार वो मेरी निगाह के आगे पढ़ता था, न दुख दो न दुख लो, न दुख दो न दुख लो। तो इसी तरीके से अगर हम अपने घर में चार जगह लगा देते हैं, और खास तौर से उस जगह जहां हमारा अधिक समय व्यतीत होता है, तो एक समान पर अगर 15 दिन हम निरंतर प्रयास कर लें, निरंतर, आज अगर कुछ कमी रह गई तो कल और घिसेंगे उसको। जैसे कोई दाग पड़ जाता है ना, तो अपन उसको छुड़ाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तमाम चीजें ट्राई करते हैं, इससे नहीं इससे, इससे नहीं इससे। तो ऐसे ही एक समान को कायम रखने के लिए हमको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, लगे रहें, और तब तक लगे रहें जब तक कि हमारा वो समान पक्का ना हो जाए। इसी के लिए दो शब्द हैं, कॉन्टिन्यूअस और कॉन्स्टेंटली, निरंतर लगे रहें और कॉन्स्टेंट एकाग्र होकर के हमको ये करना ही है, हमको भगवान के नैनों का नूर बनना ही है, कुछ भी हो जाए बनना ही है। आप देखिए पुरुषार्थ में तीव्रता स्वयमेव आ जाएगी। ओम शांति।
टॉपिक को इतना अच्छी तरह से कल सवेरे कहां था, और वो कह रहे थे कि मुझे याद नहीं, लेकिन वो टॉपिक को इतना अच्छा अंदर ले गए थे कि वो ऑटोमेटिकली। तो आप सभी ने सुना कि बाबा ने जो स्वमान दिए हैं, उस स्वमान को कार्य में लाने से या स्वमान की स्मृति स्वरूप बनने से शक्तिशाली स्थिति हमारी कितनी बन सकती है। तो अभी आज का स्वमान है मास्टर ज्ञान सूर्य। तो इस ज्ञान सूर्य के स्वमान को अच्छी तरह से धारण करते हुए भीतर में भी जरा भी कोई कोने में रही हुई नहीं, अंधकार में कुछ चीज दिखाई नहीं देती है, परंतु प्रकाश में दिखाई देती है, तो उसको हम क्या करते हैं, यथास्थान करते हैं। तो ज्ञान के प्रकाश से हमारे भीतर के जो दिव्य गुण दिव्य शक्तियां है उसको कार्य में लगाएंगे, और बहुत बहुत स्वमान और सम्मान के साथ बहन जी आपका हार्दिक धन्यवाद है, धन्यवाद है।